स्वामी श्री प्रेमपुरी अध्यात्म विद्या भवन के इस पवित्र परिसर में हम लोग आद्य गुरु भगवान शंकराचार्य द्वारा विरचित प्रबोध सुधाकर नामक ग्रंथ पर विचार कर रहे हैं। विचार के इस प्रकरण में वैराग्य और बोध के अनंतर भक्ति का प्रकरण चल रहा है। वैराग्य हुआ, ज्ञान हुआ, ज्ञान के बाद हमारी चित्त की वृत्ति अनेक परिस्थितियों में कैसी रहनी चाहिए, जगत को भी देखते हुए हमारी चित्त की वृत्ति जगत के नाम रूप जाति गुण में न उलझे, बल्कि इसको सत्ता देने वाले उस परमात्मा में हमारी दृष्टि चली जाए, तो संसार का चमक कभी हमारे हृदय को व्यथित करेगा नहीं। नहीं तो एक स्वाभाविक अध्याय तो विषयान पुंस संगस्ते सुपजायते। भले आप दो दिन चार दिन, हमने देखा है कुत्ते के साथ भी रह लो ना 10 दिन तो कुत्ते से भी मोह हो जाता। सच बता रहा, कुत्ते की बात छोड़ दो, सुअर के बच्चे के साथ भी रह जाओ तो उससे भी मोह हो जाएगा 10 दिन। जो व्यक्ति जिसका चिंतन करता है स्वाभाविक है एक न एक दिन उससे उसकी कामना तो कुछ न कुछ पैदा हो ही जाती। ध्याय तो विषयान पुंस संगस्ते सुपजायते। अभी जानते हो संगात संजायते कामा, बड़ा मुश्किल है। कामात क्रोधो भी जायते, क्रोधात भवति सम्मोह, सम्मोहात स्मित विभ्रम, अस्मित भ्रंसात बुद्धिनाशो, अबुद्धिनाशात प्रणश्यति। साथ रहने में ही सारे अनर्थों की प्राप्ति हो रही है। अब जब साथ छोड़ के कहां भाग के जाएं बताओ, रहना तो यही है ना, कहां जाएंगे बताओ। अरे जहां भी जिस दुनिया के कोने में जाओगे कोई न कोई वस्तु पदार्थ तो मिलेगा, नहीं मिलेगा बता। जंगल में भी भाग के जाओगे वहां भी पेड़ हो जाएगा, पेड़ होगा कि नहीं होगा, उस पेड़ से भी मोह हो जाएगा जिस पेड़ के नीचे तुम बैठोगे। पेड़ के ऊपर जो पक्षी आके विहार करेगी तुम्हारे साथ रहेगी उससे भी आपका क्या हो जाएगा, मोह हो जाएगा। कहां भागोगे, भाग नहीं सकते मेरे भाई, रहना इसी संसार में है। लेकिन करना क्या है कि बस अपनी दृष्टि को बदल देना है। जो दृष्टि अभी नाम रूप जाति गुण में उलझती थी उस दृष्टि को वहां से हटा करके उसको सत्ता देने वाले चतुर्भुज रूप विष्णु अथवा नारायण अथवा आत्मा में ही, चतुर्भुज का मतलब यहां समझ लेना, चार भुजा मतलब ये वाला चार भुजा नहीं, सत चित आनंद और व्यापक चार हैं। सत चित आनंद और व्यापक उस परम ब्रह्म को ही देखो, ब्रह्मा ने ही तो देखा। ऊपर ऊपर दृष्टि से दिखाई दिया तो गाय दिखती हैं, ग्वाल बाले दिखते हैं, डंडे दिखते हैं, वृंदावन दिखता है, और थोड़ा आंख बंद करके ध्यान से देखा तो क्या दिखता है, चतुर्भुज रूप विष्णु दिखते हैं। विष्णु का मतलब व्यापक ब्रह्म, विष्णु माने क्या हुआ, व्यापक ब्रह्म, सत चित आनंद स्वरूप जो ब्रह्म है वह ब्रह्म दिखता है। तो जगत में रहते हुए भी, जगत को देखते हुए भी, जगत से व्यवहार करते हुए भी हमेशा यही धारण करो कि सारा व्यवहार, सारा नाम, सारा रूप, सारा वस्तु सब परमात्मा ही है। यदि ऐसी दृष्टि करेंगे संसार का आकर्षण आपके अंतःकरण में फिर से आवृत नहीं होगा, आपके अंतःकरण को फिर से ढकेगा नहीं, और ये ब्रह्माकार वृत्ति अनवरत लगातार बनी ही रहेगी। भगवान ने एक लीला के माध्यम से बताया कि सब कैसे ब्रह्म रूप हैं। परमार्थतः विचार करो तो बताया है वही मिट्टी के भक्षण से, मृद भक्षण मिट्टी के भक्षण खा लेने से कुपिताम क्रोधित हुई। कौन क्रोधित हो गया था, स्वमात्रम उनकी माता, तो प्रमाण के लिए वक्त विकसित बदनाम, मुंह को क्या कर दिया, फैला दिया, तो सारे विश्व को भगवान ने अपने मुंह में दिखा दिया। मुंह में दिखाने का मतलब क्या हुआ, यह सारा ब्रह्मांड उस ब्रह्म के एक कोने में है। इसका भी तात्पर्य है, मुख में दिखाने का तात्पर्य क्या हुआ, सारा विश्व कौन, सारा विश्व उस ब्रह्म के कहां है, एक कोने में स्थित है, एक छोटा सा भाग है, पूरा ब्रह्म का तो वहां कोई आवश्यकता है ही नहीं। तो फिर जो विश्वरूप यदि वही परमात्मा इस सारे संसार के रूप में व्यक्त हो गए हैं, तो इसमें आश्चर्य की बात ही क्या है। तो हमारी दृष्टि अब कहां होनी चाहिए, इस नाम रूप जगत में रहते हुए भी हमारी दृष्टि नाम रूप में न रह करके नाम रूप को सत्ता देने वाले उस परमात्मा में ही दृष्टि बनी रहे, तो नाम रूप का प्रभाव आपको व्यथित करेगा नहीं। अन्यथा इस मुंबई को छोड़ करके दुनिया के किसी कोने में चले जाओगे, ये संसार तो वहां भी मिल जाएगा। हरिद्वार में लड़ाई नहीं होती क्या, हरिद्वार में क्या पुलिस थाने नहीं है क्या, क्यों भाई है नहीं, हरिद्वार में भी अपराध होते नहीं होते मतलब, तो कहां भाग के जाओगे, जहां अपराध न होता हो जंगल में चले जाओगे वहां अपराध नहीं होता है क्या, जंगल में भी अपराध होते हैं। अरे कुछ नहीं अपराध, तो एक हिरन बेचारा चल रहा था शांति से मस्ती, एक शेर आकर के उसको क्या किया, खा गया, तो बता हिरन की कोई गलती थी क्या, निरपराध हिरन को शेर ने क्या किया, वो भी तो एक अपराध है, नहीं अपराध है। तो दुनिया के किसी कोने में जाओगे आपको शांति मिलने वाली है नहीं, अशांति खोजो तो सर्वत्र आपको शांति ही शांति मिल जाएगी। अब इसका अंतिम अध्याय है अनुग्रह। देखना, साधना की अवस्था में जिसका नाम तितिक्षा था, तितिक्षा माने सहन करना, सर्दी गर्मी भूख प्यास सहन करो, सहन करो, अभी ज्ञान नहीं हुआ है, सहन इसलिए करने को बताया जाता है कि उस परिस्थिति को हटाने में लग गए तो सारी जिंदगी हटाते रहोगे, वो परिस्थिति एक रूप से हट करके दूसरे रूप में और दूसरे रूप से हट करके तीसरे रूप में आ ही जाएगी, और तुम्हारा लक्ष्य जो आगे बढ़ना था, अपने स्वरूप को प्राप्ति करना था, वहां से तुम वंचित हो जाओगे। होगा कि नहीं होगा, तो देखो हमारी दादी थी, दादी मम्मी की होती रहती थी, ये पता नहीं क्या है खान, वो परंपरा ही चली आ रही ना, ब्रह्मा ही ने डाल दिया क्या संस्कार में, सास और बहू की थोड़ी बहुत कुछ न कुछ तो होती रहती, नहीं होती है, और दूसरा किसकी होती है, ननद और भौजाई की, ये भी कुछ न कुछ होता ही रहेगा, ये इनके जीन्स में आ गया है हमें लगता है, ननद भौजाई के जीन्स में अथवा सास बहू के जीन्स में भी कुछ न कुछ नोक झोंक बोलते ना, वो होती रहती है। तो सोचा चलो दादी मर जाएंगी, इसके बाद शांति हो जाएगी, इसके बाद साधना होगी, बढ़िया घर में बड़ी मोस रहेंगे। तब तक भाभी आ गई, कौन आ गई, भाभी आ गई, तो वो जो परंपरा चल रही थी ना सास बहू वाली, वो परंपरा चलती ही रही, तो क्या हुआ, फिर माँ और भाभी की ठन्नस भी हो गई, फिर भाभी वहां से घर से छोड़ करके आगे बढ़ी किसी दूसरे शहर में, तो सोचा अब तो खानदान की ये लड़ाई वाली परंपरा क्या होगी, समाप्त होगी, लेकिन वो परंपरा समाप्त नहीं होगी, अब दूसरे भाई की बीवी आ गई, उससे वो परंपरा चलती रही। तो सारी जिंदगी आप दुनिया के लफड़े को झगड़े को समाप्त करना चाहो, लेकिन सही बताऊं किसी न किसी रूप में तो आते ही रहेगा, या आप अजमा के देख लेना। हम वही लड़ाई नहीं कर रहे हैं, सास बहू की लड़ाई नहीं कर रहा हूं, एक घर में भी, इस घर में भी बड़ा पेट खराब था, डॉक्टर के यहां गए, डॉक्टर साहब दवाई दे दो, किसी तरह उन्होंने दवाई तो दिया, पेट का रोग तो क्या हुआ, दूर हो गया, अब पेट का दूर हुआ कि आंख में दर्द हो गया, अब आंख का चश्मा चाहिए, फिर आंख का रोग दूर हुआ तो कहां दर्द हो गया, घुटने में दर्द हो गया, घुटने का अब इलाज चाहिए, घुटने का ठीक हो गया तो कहां हो गया, कमर में हो गया। सच बता रहा हूं, सारी जिंदगी उलझते रहो इसमें, कभी तुम कल्पना कर लेना, महाराज जब स्वस्थ हो जाऊंगा ना तब भगवान का भजन करूंगा, आप एक कल्पना कर लेना, जब पूरी तरह से क्या हो जाऊंगा, स्वस्थ हो जाऊंगा, ये रोग दूर हो जाएंगे, तब भगवान का हम क्या करेंगे, कभी स्वस्थ हो सकते हो क्या, और न भजन हो पाएगा, इसलिए इसकी चिंता करनी छोड़ दो। अरे कुछ नहीं हो जाएगा, फिर डायबिटीज हो जाएगी, शरीर में और कोई रोग नहीं होगा तो क्या हो जाएगी। एक हमारे परिचित है इंदौर में, भगत हैं, महाराज जी बस डायबिटीज हमारी कंट्रोल हो जाए ना, मैं आपके साथ चलने के लिए तैयार हूं, ऐसे बस एकदम चल दूंगा, हमें मोह माया कुछ नहीं है संसार में, सब काम धाम बंद कर दिया, बच्चे कर रहे हैं, बस ये डायबिटीज जो परेशान का यार, चलना ही है तो मरना ही है, और क्या डायबिटीज क्या करेगी। हम वहां जिंदा रहने के लिए थोड़े, संन्यास जिंदा और सत्ता बनाने के लिए नहीं लिया जाता, ध्यान देना। संन्यास क्यों लिया जाता है, ये सत्ता को मिटाने के लिए, औपाधिक जितनी सत्ताएं हैं इन सारे सत्ताओं को क्या करने के लिए, इस मैं को मिटाने के लिए, इस शरीर की चिंता से मुक्त होने के लिए, मान अपमान सबको छोड़ने के लिए क्या लिया जाता है। और आज संन्यास क्यों ले रहे हैं, सत्ता बनाने के लिए, वर्चस्व, अपना एक वर्चस्व स्थापित करने के लिए, इसका नाम संन्यास नहीं है। संन्यास किसका नाम है, मिटने का नाम संन्यास है। चलो जो भी है, तो संसार की प्रक्रिया है, हम क्या बताएं। ते दुनिया के उलझनों को सुलझाना चाहो तो हम कहते हैं जितना सुलझाओगे उतना ये धागा उलझता ही चला जाएगा, इसलिए इस धागे को तोड़ ही दो। माताएं शौचर बिनती थी, अब तो बिनना बंद कर दिया। कभी कभी धागा और रुई क्या होता है स्वेटर के, इतने उलझ जाते थे सूत कि उसको तोड़ के अलग ही करना पड़ता था। तो इसकी चिंताओं को भी तोड़ के क्या कर दो, अलग कर दो, और इसकी चिंता मत करो और आगे साधना के रास्ते पर बढ़ो, नहीं तो सारी जिंदगी सुलझाते रहोगे, ये संसार तो सुलझेगा नहीं। आज जिसलिए हमारा जन्म हुआ है उससे हम वंचित हो जाएंगे, क्या बात है थोड़ा, उससे हम वंचित हो जाएंगे, जिससे जिसलिए हमारा जन्म हुआ है उससे हम स्वाभाविक ही वंचित हो जाएंगे, रहित तो हो जाएंगे। तो उस समय सह लो, उस समय क्या कर लो, सह लो। कब, साधना की अवस्था में, और जब सिद्ध बन जाना तो परिस्थितियां तो बताएं उसमें भी आएंगी ना, तो अब सहने की वृत्ति नहीं रहेगी, अब उस परिस्थिति का भाव ही नहीं आएगा, सुख दुख वाली परिस्थिति में की सत्ता ही समाप्त हो जाएगी। तो जैसी भी परिस्थिति आएगी उस परिस्थिति में अनुग्रह दिखेगा, किसका, उस परमेश्वर का ही अनुग्रह दिखेगा, और वह परमेश्वर हर रूप में आपके ऊपर अनुग्रह ही कर रहा है, भले अज्ञान बस आपको नहीं लगता है कि भगवान की कृपा है, लेकिन भगवान कभी अकृपा करता ही नहीं है, ये पक्का जान लेना। देखो हम लोग कहते हैं भगवान हमारा सच्चा पिता है, क्या है, सच्चा पिता है। तो पिता बच्चे को स्कूल जाने की चिंता होती है कि बाप को स्कूल भेजने की चिंता होती है, हाँ बोलो। एक बेटी थी, छोटी बेटी है, वो कहे मम्मी सबकी शादी होती जा रही है लेकिन मेरी शादी नहीं हो रही है, मेरी शादी के विषय में कोई चिंता नहीं कर रहा है, मेरे को अपनी शादी के विषय में चिंता करनी पड़ रही है, कौन कर रहा है। तो कहा बेटी तू चिंता मत कर, जैसे तू बड़ी हो जाएगी ना तेरी शादी की चिंता तेरे को नहीं करनी पड़ेगी, कौन करेगा, तेरे माँ बाप ही करेंगे, करेंगे नहीं करेंगे, कि उस लड़की को अपनी पढ़ाई की चिंता अथवा शादी की चिंता करनी पड़ेगी। जैसे वह परमेश्वर हमारा कौन है, सच्चा पिता है, वह अपने बच्चे पर हमेशा अनुग्रह करता ही रहता है। हो सकता है ये संसार वाला जो पिता है ये तो बच्चे को चाहिए कुछ जिसका अधिकारी नहीं है, और हो सकता है यह पिता बच्चे को वह वस्तु दे देवे, लेकिन वो पिता सबके अंतःकरण में अंतर्यामी रूप से बैठ करके किसके अंतःकरण की क्या योग्यता है, किसको वह संभाल सकता है, किसको वह बर्बाद कर सकता है, किस परिस्थिति की प्राप्ति होने से उसको संसार से वैराग्य होगा, वह सब जानता है, और उसको वही चीज देता है जिसको उसको जरूरत होती है, आपकी जरूरत के अनुसार वो नहीं देता है, आपकी जिस वस्तु की आवश्यकता होती है, जिस वस्तु के पाने के बाद आपका कल्याण होता है, वह परमात्मा आपको वही वस्तु देता है। वह परमात्मा सब पर बराबर कृपा करता है, भक्ति वाले भी कहते हैं परमात्मा थोड़ा पक्षपात ले लेता है, नहीं, उनका भजन करोगे उनको लड्डू चढ़ाओगे एक किलो का तो परमात्मा क्या हो जाएगा, खुश हो जाएगा और तुम्हारी मनोकामना पूरी कर देगा। और जो परमात्मा के मंदिर में नहीं जाएगा परमात्मा उसके ऊपर कृपा नहीं करेगा। क्या ऐसी बात है क्या भाई? सूर्य जब प्रकाश देता है तो क्या है? उसी आदमी को प्रकाश देता है क्या कि जो आदमी सूर्य को अर्घ्य दे? अरे सूर्य तो सबको उतना ही मात्रा में प्रकाश देता है, जो सूर्य को अर्घ्य देवे तो भी और न देवे तो भी। तो हम लोग बड़े चालाक हैं, हम बोल देंगे भी, क्या बोल देंगे, जब महाराज जी उसका भजन करने न करने से भी कोई फायदा तो होने वाला है ही नहीं, सबको बड़बड़े फल दे रहा है तो हम क्यों भजन करें, उसके मंदिर में क्यों जाएं? तो हम मंदिर में जाकर के उसको नहीं खुश कर रहे हैं, ध्यान देना, मंदिर में जाकर के जो हमारे ऊपर वह परमात्मा कृपा कर रहा है तो अपनी कृतज्ञता को व्यक्त करने जा रहे हैं। हमारे ऊपर कृतज्ञता का दोष न आ जावे। क्या? हमारे ऊपर कृतज्ञता का दोष न आ जावे इसलिए हम वहां जाते हैं, न कि उसको खुश करने के लिए। भी मैं बता दूं भाई, एक आदमी करोड़ रुपए वाला है, आपको 1000 रुपए दे भी दिया, अरे 1000 तो जाता है कहां पे, कहां जाता है, होटल में जाता है यूं ही वो चौकीदार को देकर चला जाता है, नहीं उसको 1000 रुपए कहां चलेगा, उसको ज्यादा प्रभाव नहीं है। लेकिन फिर भी दुख के समय में उस व्यक्ति ने याद किया है और आपको दिया है और देने के बाद आपका बच्चा स्वस्थ हो गया तो आपको उस व्यक्ति के पास जाना तो नहीं जाना चाहिए। भले वो व्यक्ति को भूल गया होगा मैंने किसी को 1000 दिया था, तब भी उससे एक बात तो कहना चाहिए कि हे परमेश्वर, हे भगवान, आपके धन की वजह से आज मेरा बेटा जीवित है, आपके धन की वजह से मेरा बेटा आज आईएएस ऑफिसर बन गया, पढ़ करके कुछ भी कर गया। लेकिन भले उसको ये पता न होए, लेकिन फिर भी उस व्यक्ति को उस व्यक्ति ने दिया है, यदि वह उनके पास जाकर के आभार नहीं व्यक्त करेगा तो उसको कृतज्ञता का पाप लगेगा। क्या लगेगा, ये ध्यान देना मेरी बात है, कृतज्ञता का पाप लगेगा। इसलिए हम कृतज्ञता को व्यक्त करने के लिए उस परमेश्वर के पास जाते हैं। तो अब भी जाना नहीं बंद करना कि उसने बहुत कुछ दिया है। क्या नहीं दिया है? सूर्य दिया, जल दिया। जल कौन देता है बताओ? परमात्मा ही दे रहा है, बीएमसी बोलते ना, ये दे रहा है। अरे वो न बरसावे तो कहां से देगा, मुझे बता दो, फ्री में नहीं दे रहा है, उसी का जल इकट्ठा करके पहुंचाने का क्या लेता है? अब वो परमात्मा कितना पैसा लिया बीएमसी वालों से, मेरे को बता दो। चलो इतना जल इकट्ठा किया है ये मुंबई नगर महापालिका वालों ने, कुछ परमात्मा को जल का पैसा पेमेंट किया था क्या? सूर्य की इतनी रोशनी ले रहे हैं, कुछ हम पेमेंट करते हैं क्या? इस वाली बिजली जो बनी है ये परमात्मा के जल से ही बनी है, परमात्मा के खनिज से बनी है भाई, यूरेनियम सोडियम इलेक्ट्रॉनिक मटेरियल से बनी है। लेकिन बताओ परमात्मा को कोई पेमेंट किया क्या? लेकिन हमारे पास आई है तो हम उसको क्या कर रहे हैं, पेमेंट बोलते हैं, थैंक्स भी बोलते हैं, बहुत बढ़िया सरकार आई है, 24 घंटा बिजली, 24 घंटा पानी। लेकिन वो इतना देता है उसके लिए कभी हम नहीं बोलते बहुत बढ़िया सरकार आया है, परमात्मा बहुत बढ़िया आया है, पूरे विश्व का कितना बढ़िया पालन पोषण कर रहा है। उसके पास जाकर के तो हम 24 घंटे शिकायत करते हैं, मेरे को बेटा चाहिए था तूने बेटी दे दिया, मेरे को इतना धन चाहिए था तूने इतना धन नहीं दिया, मेरे को ये चाहिए था वो चाहिए था, भगवान मालिक है कितनी शिकायत। तब भी परमात्मा कभी बुरा मानता ही नहीं है, आपको अपने ढंग से सबके ऊपर कृपा करता है। अब सबके ऊपर एक जैसी कृपा क्यों नहीं करता बता? क्योंकि सबकी योग्यताएं अलग अलग हैं। हमें मालूम है, आपको भी मालूम होना चाहिए, एक होता फूड अकॉर्डिंग ब्लड ग्रुप्स, सुना है फूड अकॉर्डिंग ब्लड ग्रुप्स। आपका ब्लड ग्रुप कौन सा है, ब्लड ग्रुप के अनुसार कौन कौन सी डाइट भोजन आपके लिए उपयोगी है और कौन कौन सा भोजन आपके लिए अनुपयोगी है, ये किससे पता चलेगा? ब्लड ग्रुप के अनुसार। आजकल ऐसा वैज्ञानिकों ने खोजा है, जैसे ओ पॉजिटिव वाला, हमारा ओ पॉजिटिव है, उसके लिए मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट हार्मफुल रहेगा, नुकसानदायक रहेगा, ज्यादा दूध। अब किसी के लिए दूध अमृत है और किसी के लिए वही दूध क्या बन रहा है, जहर। अब जिसके लिए जहर है उसको कहते दूध पियो तो मरेगा कि बचेगा बताओ? किसी के लिए एक वस्तु कब्ज करती है, वही वस्तु दूसरे के लिए कब्ज खोलती है। अब दोनों के लिए एक उपयोगी है कि अलग अलग है। तो ऐसे ही वह परमात्मा अंतर्यामी रूप से सबके भीतर बैठ करके सबकी योग्यता को देख करके किसी को शरीर का स्वास्थ्य दे देता है, किसी को शरीर की बीमारी दे देती है, ध्यान देना, किसी का विवाह करवा देता है, विवाह करवा के उसका कल्याण करता है, और किसी का विवाह न करवा के कल्याण करता है। किसी कहां गृहस्थ का विवाह तो कराया लेकिन बेटा बेटी कोई नहीं देकर के कल्याण करता है, और किसी को बेटा देके कल्याण करता है, किसी को बेटी देके कल्याण करता है, किसी का धन देके कल्याण करता है और किसी का धन छीन के कल्याण करता है। तो वह परमात्मा जो सही बता रहे हैं, यदि जो व्यक्ति धन संभालने का अधिकारी नहीं है उसको ज्यादा धन दे दिया जाए तो क्या होता है, पागल नहीं हो जाता क्या? हमने गांव में सुने हैं कि एक हमारे यहां वो था गगरिया था, गांव में गगरिया जानते ना, बकरी चराने वाला, कहते उसको गड़ा हुआ कहीं धन मिल गया, ऐसा गांव वाले बोलते थे, तो पगला गया, गड़ा हुआ धन कहीं मिल गया और इतना सोना जिसने कभी देखा ही न हो, गगरिया मन से सब थोड़ी गरीब जाति होती थी, तो इतना सोना मिल गया तो सोने को संभाल नहीं पाया, क्या बन गया, पागल। तो जो व्यक्ति धन को संभाल सकता है परमात्मा उसको क्या देता है, धन देता है। जो व्यक्ति रूप को संभाल पाता है परमात्मा उसको क्या देता है, रूप देता है। कभी कभी हम लोग भी अपना अजमाते हैं, आजकल के संसार को देख करके सही बता रहा हूं, कभी कभी लगता है कि कहीं विवाह हो गया होता ना किसका तो या तो पागल खाने में चला गया होता, सही बता रहा हूं, जो परिस्थितियां हैं या तो ऊपर चला गया होता, सुसाइड कर लिया होता, जैसे आजकल लोग दिख रहे हैं, जैसे आजकल बच्चे दिख रहे हैं, अवज्ञाकारी, आज्ञा नहीं मानते वाले, आप कहीं से भी कुछ करो। हम लोग कभी कभी सही बताऊं, पिताजी आते थे चारपाई पे बैठे रहते थे, खड़े हो जाते थे, अब कितना सम्मान था, आजकल कोई क्या बोलते ही नहीं, खड़े नहीं होना, सब आजकल जब से आ गया है तब से किसी से फुर्सत ही नहीं है, कमरे में बैठे हैं तो यूं कर रहे हैं, कहीं किसी से बात करने के लिए फुर्सत ही नहीं है। माँ बाप करे तो क्या करे बेचारा, पढ़ाई कर रहा है फेल हो जा रहा है, माँ बाप कहें बेटा पढ़ ले, आप मेरे को डिप्रेशन में ला दोगे, जब देखो जब पढ़ते रहो, माँ बाप करे तो बेचारा क्या करे, आवश्यकताएं सब चाहिए, बड़ी मुश्किल काम है, नहीं मुश्किल आपको लगता नहीं है, आपको बता दे तभी ना परमात्मा ने आपको योग्यता दे दिया ना, लेकिन मेरे लिए मुश्किल लगता है, इसलिए परमात्मा ने हमें वो अधिकार वो दायित्व सौंपा ही नहीं, क्योंकि हर व्यक्ति की जिम्मेदारियां क्या है, तो जो व्यक्ति जिस हमें वाली जिम्मेदारी संभाल सकते हैं, इसलिए परमात्मा ने हमें कौन सी जिम्मेदारी दिया, ए वाली जिम्मेदारी दे दिया, और आप ओ वाली जिम्मेदारी संभाल सकते हो, इसलिए परमात्मा ने आपको कौन सी जिम्मेदारी दे दिया, ओ वाली जिम्मेदारी दे दिया, आप संभाल सकते इसलिए दे दिया, हम नहीं संभाल सकते इसलिए हमें, तो परमात्मा ने आपके ऊपर भी उस रूप से कृपा किया है, आप इस रूप से परमात्मा ने किसके ऊपर कृपा किया है, मेरे ऊपर कृपा किया है, इनको भी उस रूप में कृपा किया है, इसलिए परमात्मा ने सबके ऊपर ही कृपा किया है, किसी के ऊपर उसकी अकृपा है ही नहीं, ठीक है। ये हमेशा बुद्धि में लेकर चलना, हम कभी कहें इनके पास तो करोड़ रुपए हैं, हमारे पास तो है ही नहीं, अरे भैया करोड़ मेरे पास हो जाते ना तो पागल हो गया होता, सही ना, संभाल नहीं सकता, कहां लगाऊं, क्या करूं, कैसे क्या करूं, और उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, तो वो संभाल सकते इसलिए उन्होंने दिया, उनको दिया, और हम नहीं संभाल सकते इसलिए उन्होंने हमें नहीं दिया, कभी कभी हम लोग देखते हैं ना, इसलिए बता रहा, कैसे आप कर सकते हो, तो शास्त्र इसके विषय में आपके पास प्रमाण है। भगवान उद्धव से क्या कहते हैं, उद्धव तेरे रहने लायक जमीन है ही नहीं, तुम यहां से सीधे चले जाओ, कहां बद्रीनाथ, नीचे उतरना ही नहीं, बद्रीनाथ के नीचे एक महात्मा है तपोवन महाराज, वो तो ऋषिकेश के नीचे उतरते ही नहीं थे, कहते इसके नीचे तो सारी भोग भूमि है, ऋषिकेश के ऊपर ही रहते, पहाड़ के नीचे उतरे ही नहीं सारी जिंदगी जब से छोड़ के गए, साउथ के थे संत, जानते होंगे तपो, हाँ चिन्मयानंद जी के गुरु जी थे, वो ऊपर ही रहे नीचे आए ही नहीं, तो उद्धव जी से भी भगवान कहते हैं तुम नीचे आना नहीं भूल करके, कहां चले जाओ, बद्रीनाथ, अर्जुन बेचारा बद्रीनाथ जाने की तैयारी कर लिया था, नहीं किया था, कि मैं तो संन्यास ले लूंगा, भिक्षा से भोजन करूंगा, ये लड़ाई दंगा मेरे बस की बात है ही नहीं, अब नहीं करूंगा, क्यों अपने को मारना। तो भगवान ने उसको क्या कहा, अरे बेटा अभी तू न भाग, मैं जानता हूं तू भागेगा भी ना तो वहां भी लड़ाई दंगा करेगा, इसलिए वहां लड़ाई दंगा करे वो बुरा है, इसलिए लड़ाई दंगा करना है तो कहां कर ले, इस संसार में ही जितना करना है कर ले। तो अर्जुन के लिए क्या देते हैं, इस संसार की प्राप्ति करवाते हैं, और उद्धव के लिए क्या देते हैं बदरीनाथ। ध्यान देना, राजा बलि के पास कितना बड़ा धन था, लेकिन भगवान उसका धन सारा क्या करते हैं, छीन लेते हैं, छीन के बलि का कल्याण करते हैं। और विभीषण का धन तो छीन ही छिनाया था, लेकिन विभीषण को राज्य दे करके विभीषण का कल्याण करते हैं। नारद जी महाराज हमारे हैं, कौन नारद जी, विवाह की सारी तैयारी, लड़की देख लिया, बस भगवान ऐसा रूप दे दो कि बस वो लड़की मेरे गले में क्या कर देवे, जयमाल डाल देवे। भगवान ने कहा न चिंता कर, हो क्या है, जय विधि नाथ हो हित मोरा, करहु सुबेग दास मैं तोरा। हे प्रभु जिस तरह से मेरा कल्याण होवे आप वह उपाय करो। भगवान हम नारद जी का कल्याण किसमें देखते हैं, विवाह करने में, विवाह न करने में, आप बताओ है? अब न करने में, लेकिन नारद जी कहां देख रहे हैं अपना कल्याण, विवाह करने में देख रहे हैं। अब भगवान कहां देख रहे हैं, विवाह न करने में। तो नारद जी का ऐसा रूप दे दिया कि उसने उसकी तरफ मुंह ही नहीं उठा के देखा, गले में जयमाला दूसरे के डाल दिया। नारद जी बड़े दुखी हो गए। वहीं शंकर जी क्या कर रहे हैं, विवाह नहीं करूंगा, बस एक बार करके देख लिया, सती के साथ विवाह करके क्या कर लिया, देख लिया, अब दोबारा विवाह भूल करके करूंगा भी नहीं। और विवाह कितनी बार कैंसिल होते होते रहा, लेकिन बीच में नारायण आ करके बिचौलिया बन बन करके शंकर जी का विवाह क्या करा लिया, करवा के दिया। तेज विवाह ना करने को बोलता है, लेकिन भगवान ने क्या किया, उसका विवाह करवा दिया। एक विवाह के लिए हां भरता है और भगवान ने उसका विवाह नहीं करवाया। बताओ सबके साथ भगवान कृपा कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, अब सबको एक ही बकरी की तरह एक ही डंडे से चलाएं या सबको चलाने के लिए अलग अलग डंडा यूज करें। तो आपके ऊपर भी अलग अलग डंडा चाहिए नहीं चाहिए, तो वह परमात्मा अलग अलग डंडे से हम सबको चला रहा है, कृपा कर रहा है। उस परमात्मा की कृपा कहां है, असुरों को मार करके भी कृपा होती है, मौत के रूप में भगवान हमारे ऊपर क्या करते हैं, जब सारे दुखों से बचने का कोई उपाय नहीं दिखता है तो परमात्मा कहते हैं अब इसको क्या कर दो, क्या करो, शरीर छोड़वा दो। हमने इतना देखा है, आपको सही बताया, यकीन न हो इसकी, कभी कभी कृपा का एहसास करो। जब आपके जीवन बहुत बड़ा दुख आ जाए, उस दुख को आप सहने लायक नहीं रह जाओ, तो परमात्मा तुरंत आपको बेहोश कर देता है। देखा नहीं देखा है, तो परमात्मा के पास एक इंजेक्शन भी है। कौन सा इंजेक्शन, एनेस्थेसिया का। तुरंत जब असहनीय दुख दर्द हो जाता है तो आपको भले चोट न लगी हो लेकिन आपको क्या हो जाएगा, चक्कर खा के गिर जाओगे। अब क्या हो रहा है, कौन रो रहा है, कौन जी रहा है, सबसे कोई असंग निर्लेप हो गए। और जब थोड़ी देर के बाद परिस्थिति ठीक हो जाएगी तो परमात्मा को दिया हुआ इंजेक्शन अपने आप ही प्रभाव रहित होकर के फिर से आपको उठा देगा, जिसको संभालने लायक आप रहोगे। तो परमात्मा कभी किसी को इतना ज्यादा दुख नहीं देता है कि वह दुख उसके द्वारा सहन करने योग्य न रहे। ऐसा यदि दुख दिया भी तो दुख देने के पहले एनेस्थेसिया का इंजेक्शन दे करके उसको क्या करता है, बेहोश करके जब तक वह दुख रहता है, और जैसे दुख कम हो जाता है तो उसको फिर से होश में ले आ देता है। इसलिए देखो कभी किसी का कोई मर जाता है, कुछ होता है तो माई या कोई बेहोशी हो जाता है, जब तक क्रिया कर्म जलाया वलाया तब उसको होश में आया, इसके बाद चलो नॉर्मल हो जाता है। आगे हम चलते हैं। तो परमात्मा ने दुख किस पे किया, अब एक का वेदांत का रहस्य देखना। विष विषम स्तन युगलम पायितुम पूतना गृहम प्राप्ता तस्या पृथु भाग्याया आसीत कृष्णार्पणो देह। आप लोग जानते ही जानते हैं एक पूतना नामक कौन सी राक्षसी थी, कहते विष विषम भयानक विष लगा करके, कहां लगा करके, स्तन युगलम, युगल स्तनों पे लगा करके पायतुम पिलाने के लिए, कृष्ण को दुग्ध का पान कराने के लिए पूतना गृहम प्राप्तम। पूतना जी महाराज कहां आई, कृष्ण के घर में आई, नंद बाबा के यहां आई। आई तो फिर क्या हुआ, कहते हैं तस्या, उसका बहुत बड़ा भाग्य था, पृथु भाग्याया, बहुत बड़ा भाग्य था। भगवान कहते भी हैं अरे तू मेरे दरवाजे में तो आया है, अरे किसी भी रूप में आ जाए कोई बात नहीं है, उसका बहुत बड़ा भाग्य है कि उसने अपने देह को ही समर्पित कर दिया, किसको, उस परमात्मा को। आप शंकर जी का उदाहरण सुना है कि चोर चोरी करने गया, सुना ना, घंटा चुराने के लिए, और घंटा थोड़ा कहां था, ऊंचे था, तो किस पे चढ़ गया, शिवलिंग पे ही चढ़ गया, तो क्या हुआ, प्रकट हो गए भगवान। ऐसा भगत तो आज तक कोई मिले ही नहीं, सब जल चढ़ाता था, कुछ चढ़ाता था, इसने तो तूने अपने आप को ही चढ़ा दिया। तो पूतना का भी उसने अपने आप को समर्पित करने के लिए गई भगवान को, और भगवान ने उसको एक माता का दर्जा दे करके उसको मुक्त कर दिया, अपने स्वरूप की प्राप्ति, एक माँ का दर्जा जो मिलना चाहिए भगवान उसको वह दर्जा वह स्थिति दे दिया। ये तो एक कथा है, नहीं एक कहानी है। अब थोड़ा देखना है ये पूतना, ये भगवान कृष्ण के साथ राम के साथ थोड़ा चक्कर एक जैसे ही सा लगता है, कहीं कहीं समानता है, कहीं कहीं क्या है, विषमता भी है। भगवान राम का भी चक्कर पहली बार पाला पड़ा किससे पड़ा, तारका से, अब कृष्ण का भी पहला पाला पड़ा किससे, पूतना से, है नहीं। कृष्ण ने अर्जुन पुत्र, ओ कृष्ण ने इंद्र पुत्र की सहायता किया और सूर्य पुत्र को मरवाया, यही है ना, किसने, कृष्ण ने क्या किया है, सूर्य पुत्र कौन है, कर्ण को मरवाया, और इंद्र पुत्र अर्जुन की क्या किया, बचाया, और राम ने सूर्य पुत्र कौन है, सुग्रीव है, उनको बचाया, किसको बचाया, सूर्य पुत्र सुग्रीव को क्या किया है, बचाया, और इंद्र पुत्र बली बाली राजा बाली को मरवाया। यहां उल्टा हो गया नहीं, यहां सूर्य के पुत्र को बचाया है रामायण में, और महाभारत में सूर्य के पुत्र को मरवाया है, और इंद्र के पुत्र को, इंद्र के पुत्र को महाभारत में बचाया है, वहां इंद्र के पुत्र बाली को क्या किया है, मरवाया है। चलो ये सब तो इतिहास की बातें हैं, लेकिन यहां हम देखते हैं तो दोनों, चाहे पूतना होवे और चाहे ताड़का होए, ये अविद्या के प्रतीक है, किसके प्रतीक है, अविद्या, अविद्या ने अपने स्तन युगलों में, स्तन माने भोग की सामग्री, बच्चे का भोग क्या है, स्तन ही तो है ना भोग्य, मतलब भोग्य है, भोग्य की सामग्री, तो स्तन युगल माने ये अविद्या का ये जगत ही भोग्य है, स्तन है, ध्यान देना वेदांत का फर्क है, अविद्या से, अविद्या का ही स्वरूप। अरे भाई आप महा उसमें शिव उसमें पढ़ा होगा, किसमें, रावण कृत तांडव स्त्रोत्र, कि शंकर जी ने पार्वती के स्तन युगलों के बड़ी चित्रकारी किया स्तन युगलों पर, तो स्तन युगल माने क्या हुआ, पूरी पृथ्वी ही, और उस पर संसार रूपी एक चित्रकारी किया है, तो अविद्या से ही पैदा हुआ कौन है, संसार है, संसार भोग्य है नहीं भोग्य है, तो संसार क्या हुआ, एक स्तन के तुल्य हुआ, स्तन माने क्या हुआ, भोग्य के तुल्य हुआ, वह अविद्या उस भोग्य को भुगवाने के लिए जीव के पास आती है, किसके पास आती है, जीव के पास, तो सारा संसार किसके पास आया हुआ है, सारा संसार आपके भोग्य के रूप में आपके सामने उपस्थित हुआ नहीं हुआ, अरे भोक्ता तो आप ही हो नहीं, आपके सिवा अहम ही क्या है, भोक्ता है, और इदम तया जितना भी वस्तु दिख रही है सारी वस्तु क्या है, भोग्य है, तो भोग्य किसने पैदा किया है, बोलो भाई, अरे भाई अभी तो दूसरा लीला चल रही है, अविद्या, ये सारा संसार परमात्मा ने अविद्या से तो पैदा हुआ ना, ये सारा भोगी जगत कहां से पैदा हुआ, अविद्या से पैदा हुआ है नहीं लेकिन प्रतीत हो रहा है। आए पान कराने के लिए आपके पास आया, मेरे को भोगो ना, किसने आई, अविद्या ने, कौन सी, पूतना ने, लेकिन उसके अस्तनों में क्या लगा है, जहर लगा हुआ है। तो संसार का यदि ऊपर ऊपर का भोग भोगोगे तो आप जहर माने मरोगे और जियोगे, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम और पुनरपि जननी जठरे शयनम। हम लोग यही कहते हैं संसार के ऊपर ऊपर भोग को भोग लेते हैं, लेकिन भगवान कहते हैं मैं ऊपर ऊपर का भोग नहीं भोगूंगा, मैं तो तुम्हारे प्राण ही पीऊंगा। तो इस सारे भोगों का जो रस है, सारे भोगों का रस क्या है, इन भोगों में पांच चीजें हैं, अस्थि भाति प्रिय है, ये तो अनाम रूप है। अनाम रूप को और छोड़ दो तो उसको भी पांच चीज दे जाओ प्रपंच में, नाम रूप जाति गुण और क्रिया, हम इन्हीं को पीते हैं, किसको, नाम रूप जाति गुण और क्रिया का ही पान करते हैं और संसार में बार बार मरते हैं और बार बार जन्मते हैं। भगवान कहते हैं कि मैं तो ये जहर तो पीऊंगा नहीं, बल्कि मैं इन जहर का जो प्राण है, इस संसार का जो कौन है, प्राण है, उस प्राण का ही पान करूंगा। तो प्राण का जैसे पान किया तो प्राण कौन है, अस्थि भाति और प्रियता, ऐसे अस्थि भाति प्रियता का प्राण पान कर लिया तो अविद्या और अविद्या से पैदा हुआ सारा संसार एक झटके में क्या हो गया, लय की प्राप्ति को कर गया। तो आप भी, आपका भी मुकाबला किससे होगा, हाँ ऐसा नहीं समझा कृष्ण का ही, कृष्ण को ही पिलाने के लिए आई है, कृष्ण को ही पिलाने के लिए पूतना, ओ पूतना नहीं क्या, हाँ पूतना नहीं आई है, आपको भी पिलाने के लिए एक पूतना आती है, क्या पिलाने के लिए आती है, स्तन में लगा हुआ जहर अर्थात संसार रूपी जहर को पिलाने के लिए वो आपके पास आती है, लेकिन हम भी क्या करते हैं, उस संसार के जहर को पी लेते हैं, लेकिन जहर के भीतर छिपा हुआ जो जहर को सत्ता देने वाला है, जो कौन है, सत्चित आनंद, उसको हम पी। इसीलिए भगवान ने कहा अष्टावक्र गीता में, कस्या पिता धन्यस्य लोक चेष्टा अवलोकनात्, कौन ऐसा महापुरुष है संसार की चेष्टा को, संसार की चमक धमक को, संसार के व्यवहार को देख करके संसार में जीवित इच्छा बुभुक्षा च बुभुत्सोपशमम गतम, संसार को भोगने की इच्छा, संसार को पाने की इच्छा, संसार को जानने की इच्छा किसकी समाप्त हो जाती है, बड़ा मुश्किल है ये संसार, ऐसी चमक धमक, देखा ना जब अविद्या आई ने ऐसी चमक धमक के साथ आई कि विद्या को कोई रोकने की हिम्मत कर ही नहीं सका। तो संसार की चमक धमक जब हमारे जीवन में आती है ना तो कभी हम उसको मना करते नहीं है, लेकिन भगवान कहते कोई बात नहीं उसको आने दो, हम उस अविद्या और अविद्या से उत्पन्न हुए जो भोग है, दूध है, उस दूध में हमें पीना क्या है, क्या पीना है, अमृत को पीना है और जहर जहर को क्या करना है, छोड़ देना है। तो आप भी इस संसार में रहोगे तो संसार का पान तो करना ही पड़ेगा, पीना ही पड़ेगा, संसार का पान किए बिना रहोगे नहीं, लेकिन क्या पान करना है बोलो भाई, उसके प्राण, प्राण माने उसकी जान नहीं लेनी है, प्राण माने उसका जो रस है, सार है, प्राण माने क्या हुआ, उसके सार को पी जाओ और जो छिलका है, जहर रूप है, उसको क्या करो, छोड़ दो। अरे भाई आम पीते हैं तो क्या पीते हैं, छिलका खाते हैं रस, केला खाते हैं तो क्या लेते हैं, छिलका का रस, तो ऐसे छिलका छिलका को छोड़ दो। लेकिन हम लोग क्या करते हैं संसार में, छिलका छिलका को खाते हैं और रस को क्या करते हैं, छोड़ देते हैं दिखावे के लिए, आजकल यही हो रहा है, जो कुछ बनाते हैं ना रस निकाल देते हैं, उबाल करके उसका तत्व क्या हो जाता है, बह जाता है, चावल बनाते नहीं बनाते हैं, तो चावल बना के क्या करते हैं माताएं, उसका जो मांड होता है, मांड वाला भाग, उसको क्या करती हैं, बहा देती हैं। और चावल क्या होना चाहिए, एक दूसरे से एकदम अलग अलग, बड़े बड़े चावल एक दूसरे से क्या होना चाहिए, अलग, भले तब तुझसे निकल गया हो लेकिन देखने में अच्छा लगना चाहिए। तो बताओ एक खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए, यही खाना चाहिए। अरे भाई मांग जिसको पीना चाहिए, जिसमें तत्व है, ताकत है, उसको क्या करते हैं, छोड़ देते हैं, और जिसमें तत्व नहीं है, रस नहीं है, उसको क्या करते हैं, खाते हैं, तो क्या फायदा होगा। ऐसे हमने देखा उबालने वाली सब्जी भी, इसे सब्जी उबालते हैं तो रस को क्या करते हैं, फेंक देते हैं और छिलका छिलका को खाते हैं, पता नहीं क्या यही आदत हो गया संसार में। हमें वो छूछ खाने की आदत हो गई है, छूछ माने छिलका खाने की क्या हो गई है, आदत हो गई है। रस को हमने पीना क्या कर दिए हैं, छोड़ दिए हैं। ए इसका वेदांतिक अर्थ समझ में आ गया किसका, ये पुतना कौन है, अविद्या। स्तन क्या है, भोग्य पदार्थ। उस पर जहर क्या है, नाम रूप जाति गुण और क्रिया। आई नाम रूप जाति गुण क्रिया रूपी जहर के भीतर भी स्तनों में भी क्या छिपा है, अस्थि भाति और प्रियता रूपी परमात्मा है। तो यदि आपके पास यह पूतना आवे तो समझे नाम रूप जाति गुण क्रिया को क्या करना, छोड़ देना, उसको सत्ता देने वाले उस अस्थि भाति प्रियता को ही क्या करना है, पान करना है। और उसको जैसे ही पान करोगे तो अविद्या और विद्या का सारा प्रभाव नष्ट हो जाएगा। रस्सी को रस्सी रूप में जान करके जैसे भोगोगे ना तो सर्प और सर्प का जहर अपने आप गायब हो जाएगा, इसलिए अविद्या समाप्त हो जाती है फिर आपके अपने जीवन के लिए। पौराणिक कहानियों में तो बहुत कुछ बताया है, आपने सुना ही है, पौराणिक कहानी में बहुत कुछ बताया। अविद्या इतनी विशाल थी कि वो मरी तो कितना बीघा कितना किलोमीटर तक उसका शरीर हो गया। तो इसके विषय में तो बड़ा कमेंट करते हैं स्वामी दयानंद सरस्वती, कहते मर गई होती तो मथुरा उथुरा तो उसी के नीचे आ गया होता। नहीं बोलते हैं, उनका है ना दयानंद सरस्वती की पुस्तक कौन सी, सत्यार्थ प्रकाश, तो इतना कल्पना नहीं। मैं तो कहता उन्होंने कम बोला है, ये अविद्या अविद्या का प्रभाव इतना है उसके नीचे बैठा हुआ सारा विश्व ही है। उन्होंने तो सीमा भागवत में कम बताई है, 10 योजन लंबाई चौड़ा बताया है, लेकिन मैं तो कहता हूं 10 योजन नहीं, पूरा विश्व ही उसकी गिरफ्त में है। किसकी गिरफ्त में, सारा विश्व ही उसके नीचे दबा हुआ है। किसके नीचे, उस अविद्या के नीचे दबा हुआ है, लेकिन उस अविद्या के ऊपर कौन बैठा हुआ है, किस समय कहते हैं उस, मतलब इतने ऊपर उठे हुए स्तनों पर बैठे हुए मुस्कुरा रहे हैं, उसके ऊपर उनका कोई प्रभाव पड़ा ही, तो आप भी इस अविद्या के ऊपर बैठ जाओ। अब बैठ करके मुस्कुराओ तो उस अविद्या का प्रभाव आपके ऊपर पड़ेगा नहीं। इससे फायदा क्या होगा, तो 2 राक्षस जीवन से मरेंगे, आपके भीतर जो 2 वृत्तियां हैं वह 2 वृत्तियां समाप्त हो जाएंगी। वहां भी देखना, जब अविद्या को तारका को भगवान राम ने मारा तो वहां भी 2 राक्षस थे, एक सुबाहु दूसरा मारीची, दोनों समाप्त हुए। यहां भी 2 राक्षस आके समाप्त हो जाएंगे, कौन है, एक सकटासुर, कौन है, एक है सकटासुर और दूसरा राक्षस है जिसका गला दबा दिए थे भगवान ने, त्रिंगावर्त, कौन है, त्रिंगावर्त। इसका मतलब क्या हुआ ये भी समझ लो, अनयत पृथुतर सकटम निज निकटम वा पितापराधम अपि कंठाश्लेष विशेषात अवधीत वाले असुरम किसंग है। कहते हैं सकटासुर का विशाल अपराध करने पर भी कृष्ण ने उसको मार करके भी अपने निकट बुला लिया। इसे सकटासुर सकट माने वाले गाड़ी, सकट काम हिंदी में क्या हो जाता है कि गाड़ी, इसलिए किस पे सवार हुआ था, बैलगाड़ी पे, मालूम नहीं मालूम है, कृष्ण जी नीचे लेटे थे छाया के लिए, गांव में ऐसा करते हैं, बैलगाड़ी के नीचे पालने पे किसी उस पर लिटा दिया, ऊपर सकट नामक गाड़ी थी, बैलगाड़ी थी, और बैलगाड़ी के ऊपर और भंडे बर्तन सब रखे हुए थे, उसी पे आकर के वह असुर बैठ गया, कौन, सकटासुर। और भगवान को सोचा मैं क्या करूं, दबा दूं, तो भगवान ने पांव उठाया और उसको क्या किया, मार डाला। तो सकट माने गाड़ी, गाड़ी माने आवागमन का प्रवाह, सकटासुर का मतलब क्या हुआ, आवागमन का प्रवाह। तो जैसे आपके जीवन से अविद्या मरेगी आपके जीवन के आवागमन का प्रवाह भी समाप्त हो जाएगा। सकटासुर और कोई राक्षस नहीं है, सकटासुर कौन सा राक्षस है, सकट माने क्या हुआ, गाड़ी, तो गाड़ी क्या करती रहती है, चलती नहीं, कभी धनी से गरीब, गरीब से गरीब, मनुष्य पशु पक्षी किस किस योनियों में कहां कहां भटकती रहती है, तो पुनरपि जननम पुनर्पमरणम का जो दौर है, आवागमन का जो प्रवाह है, आपके जीवन से उस प्रवाह का समापन हो जाएगा यदि आपके जीवन से अविद्या मिट गई तो। फिर दूसरा एक राक्षस आता है, कौन सा राक्षस आता है? तृणावर्त। इसके विषय में देखा होगा, भगवान मैया की गोदी में बैठे थे, मैया की गोदी में बैठे थे और क्या किया मैया ने, वो भगवान थोड़ा वजन हो गए, क्या हो गए? वजन हो गए, और इतना वजन हो गए कि मैया को बेटे का भी छोटे से लाला का वजन भी बर्दाश्त नहीं हुआ, तो मैया ने उस बेटे उठा के क्या किया, किनारे कर दिया और अपने काम करने लगी। तब तक तृणावर्त आया और एक तूफान बन करके और उसको उठा के भागा, भगवान को लेके क्या किया, भागा। भगवान उसका ऊपर जाके क्या किए, गला दबाए और सियावर रामचंद्र की जय कर लिए। तो ये तृणावर्त क्या है, हमारे अंदर जो लोक के संग्रह है, सारे संसार में मैं छा जाऊं, सारे संसार मेरा नाम हो जाए, सारे संसार में पोस्टर बैनर से मैं क्या हो जाऊं, ढक जाऊं, इस वृत्ति का नाम कौन है, तृणावर्त। वास्तव में तृणा ही है संसार में, सही घास की तरह है, मानो न मानो नहीं लगती, आज लगता है तूफान जैसे थोड़ी देर के लिए आता है, थोड़ी देर के बाद अपने आप क्या हो जाता है, शांत हो जाता है। ऐसे समान भी एक अल्प समय आता है और दूसरे क्षण भी उसका क्या हो जाता है, अस्तित्व ही समाप्त हो जाता है। इसलिए यदि ज्ञान हो गया तो आवागमन का प्रवाह समाप्त होगा और दूसरा क्या समाप्त होगा, आपके अंदर जो सम्मान पाने की इच्छा है, सारी दुनिया में छा जाऊं, लोक के संगा की भी निवृत्ति हो जाएगी। ये दोनों फायदे हैं, दोनों का महत्व समझना। दूसरा कि भगवान ने इन पापियों को मार करके भी इनके पापों से उद्धार करके अपने लोगों को प्राप्त करा दिए। तो बताए ना, दुखी व्यक्ति को जीवन के बंधन, शरीर के बंधनों से छुड़वा करके उनके पाप को कम करते नहीं करते, और कम करके भगवान ने उसको अपना लोक दे दिया तो और क्या कर दिया। फिर भगवान ने और दो का कल्याण किया, यमला अर्जुनो तरु उन्मूल्य उलूखल गतस चिरम खिन्नो रिंगन अंगर भूमो स्वम आलयम प्रापयन रिहरी। बड़ा बढ़िया उदाहरण दिया, यहां पर ध्यान देना, अपने ही आंगन में खेल रहने वाले ये दो वृक्ष हैं, आपका आंगन कौन है? थोड़ा वेदांत सुनना भाई, यहाँ प्रेमपुरी है, ज्यादा यहाँ वो नहीं चलेगा इसका पूरा। अपना आंगन कौन है? अंतःकरण। आपका आंगन कौन है? अंतःकरण। तो अंतःकरण रूपी आंगन में ही भगवान रेंगते हुए आए और दो वृक्ष थे, कौन? यमलार्जुन। कौन थे? यमल और अर्जुन नामक दो वृक्ष थे। चिरम खिन्न, बहुत काल से बेचारे दुखी थे। अरे वृक्ष होनी भी दुखी का हेतु है, सर्दी गर्मी वर्षा तूफान का प्रतिकार किए बिना बेचारे सहन करते रहते हैं। भगवान ने उनके दोनों दुखों को भी क्या कर दिया, उखाड़ करके उनको समाप्त करके दिव्य शरीर दे दिया। तो आपके भीतर भी दो पेड़ हैं, कौन कौन से? राग और द्वेष, यही यमलार्जुन है। ये कहां रहते हैं? आपके अपने आंगन में। कौन से आंगन में? अंतःकरण रूपी आंगन में ये दोनों पेड़ रहते हैं, कौन कौन से? यमलार्जुन। ये पेड़ हैं, जड़ हैं। क्या हैं? जड़ जैसे हैं, जड़ की तरह हो गए हैं। तो इनको भी उखाड़ के फेंक दिए, अर्थात जड़ को भी हटा करके इनको क्या बना दिया, चैतन्य बना दिया, अपना स्वरूप दे दिया। तो भगवान ने अच्छा किया बुरा किया? यही नहीं, राम ने भी देखना, ये लीलाएं बड़ी तारतम्य से चल रही हैं। वहां भगवान राम ने तारका को मारा, तारका को मारने के बाद दो असुर थे, कौन कौन? सुबाहु और मारीची। तो सुबाहु को तो मार दिया और मारीची को दूर फेंक दिया, सौ योजन दूर समुद्र के किनारे फेंक दिया। यहां भी भगवान ने तुरंत तारका को मारने के बाद दो असुरों को मारा है। एक असुर कौन है? सकटासुर। दूसरा असुर है तृणावर्त। तृणावर्त वही सम्मान की वासनाओं को उन्होंने क्या कर दिया, दूर फेंक दिया। और भगवान ने तो दूर नहीं फेंका है, बल्कि क्या किया है, मारी डाला है। इसलिए भगवान कहीं कहीं कहते ना, निंदा के पात्र बन रहे, उनको सम्मान की कोई इच्छा। अरे राम तो हमेशा अपने सम्मान के लिए क्या किए हैं, डरे हैं, हमारे ऊपर कोई उंगली उठाने न पावे, हम ऐसा काम करें, इसलिए उन्होंने दूर फेंका। लेकिन राम ने क्या किया, ओ कृष्ण ने क्या किया, अरे जिसको जो बोल रहा हो बोलता रहे, हम तो उसको मार ही डालते हैं। किसको? इस सम्मान की वृत्ति को भी क्या करते हैं, मार डालते हैं। फिर राम ने कौन सा काम किया बोलो भाई? अहिल्या का उद्धार किया। अहिल्या भी क्या थी? पत्थर थी। अहिल्या भी क्या थी? पत्थर रूप हो गई थी, उसका उन्होंने उद्धार किया। और कृष्ण ने भी उसी क्रम से उद्धार किया है। किसका उद्धार किया है? यमलार्जुन नामक दो वृक्ष थे, जो वृक्ष भी वो भी क्या है, जग रूप है। जग को भी उन्होंने क्या बना दिया, चैतन्य बना दिया। राम ने भी उस पत्थर को क्या बना दिया, चैतन्य बना दिया। देखो हमारा अंतःकरण ने ये राग द्वेष के कारण सही जड़ हो गया है। हमारी अंतःकरण में राग द्वेष के कारण इसमें क्या आ गई है, एक जड़ता आ गई है। यदि ज्ञान हो जाएगा तो आपके अंतःकरण की राग द्वेष रूपी जड़ता समाप्त होकर के यह अंतःकरण ही चैतन्य परमात्मा मय बन जाएगा। चित्तम चित विजानियत, चित्त ही चित्त बन जाएगा। क्या बन जाएगा? चित्त ही चित्त बन जाएगा। तकार रहितम एदा, जब चित्त से त हटा दोगे तो क्या है, तकारो विषयाध्यास है। त है विषयों का अध्यास, विषयों का राग द्वेष। तो आपके अंतःकरण से विषयों का राग द्वेष हटा तो आपका अंतःकरण ही क्या बन जाएगा, परमात्मा बन जाएगा। तो परमात्मा की लीला समझ में आ रही है? ये लीला परमात्मा की नहीं, किसकी होनी चाहिए? आप सबकी होनी चाहिए। ये ध्यान देना, आपके पास भी पूतना आई होगी, हमारे पास भी आई थी है? लेकिन पूतना का भी हमें स्तन पान करना पड़ेगा, लेकिन जहर नहीं पीना। जहर क्या है? नाम रूप जाति गुणा और क्रिया। और हमें पीना क्या है? अस्थि भाति और प्रियता। फिर आपके भीतर दो असुर होंगे। एक असुर है क्या, मतलब ये होते ही जन्म मृत्यु का प्रवाह समाप्त हो जाएगा, तो सकटासुर मर जाएगा। और दूसरा जो सम्मान की वृत्ति है, वह सम्मान की वृत्ति भी समाप्त हो जाएगा। और अंतःकरण में उपस्थित जो राग द्वेष है, जिसके कारण आपका अंतःकरण जड़ बना हुआ है, उसको भी चैतन्य बना करके भगवान उस अंतःकरण का भी कल्याण कर देते हैं। आगे किसको मारते हैं, इस पे चर्चा हम लोग, लेकिन ध्यान देना ये है भागवत का वेदांत। ओम शांति शांति शांति।